फ्रस्ट्रेशन और आस्था की जासूसी। अरमान मन ही मन तय कर चुका था कि आस्था का असली चेहरा वो सबके सामने लाकर ही रहेगा। अब आगे फिलहाल जैसे ही अरमान वहां आया और उसने देखा कि आस्था इस वक्त दादाजी के साथ बैठी हुई है, दादाजी बड़े प्यार से उसका सर पर सहला रहे हैं। अब ये देखकर अगले ही पल अरमान का माथा सिकुड़ गया और वो गुस्से से सोचने लगा कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है, क्या ये मेरे दादाजी को भी मैन्युपुलेट करने से पीछे नहीं हटेगी। हाँ, फिलहाल अरमान तुरंत वहां उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। अरमान गुस्से में अकड़ते हुए, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और दादाजी आप इस लड़की के सर पर हाथ क्यों फेर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आपके साथ यहाँ क्या कर रही है। जल्दी ही आस्था ने अपने आंखों में आए आंसुओं को चुपके से साफ किया और परेशान होकर सोचने लगी, मिस्टर सिंघानिया इस वक्त इतनी जल्दी घर वापस से कैसे आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो दोपहर का ही वक्त है और इस वक्त ही अचानक घर क्यों आए हैं। अगर इन्होंने आकाश भैया, सुमित भैया या ध्रुव आहान के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। अब आस्था कुछ सोचते हुए हड़बड़ाकर बोली, आप इस वक्त यहाँ कैसे आ गए, ये तो आपके ऑफिस टाइम है ना, आप इस वक्त घर कैसे आ सकते हैं, आज तो आपकी खुराना इंडस्ट्री के साथ और वर्मा एम्पायर के साथ भी आपकी तीन मीटिंग थी और वो मीटिंग तो 2 बजे के बाद स्टार्ट होने वाली ना, तो आप वो तीनों मीटिंग छोड़कर घर कैसे आ सकते हैं। जैसे ही आस्था ने अरमान के आज के शेड्यूल की सारी डिटेल्स अरमान को बताई तो वैसे ही अरमान की आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं और उसके चेहरे का रंग एकदम से बदलने लगा। उसने आस्था को घूरते हुए सोचा कि इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मुझ पर जासूसी कर रही है, इसे कैसे पता चला कि मैं इतनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करके आया हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये सोचते हुए वो तुरंत आस्था के बेहद करीब जाकर खड़ा हो गया। एक पल के लिए आस्था और अरमान की सांस आपस में खुलने लगी, लेकिन अरमान ने तुरंत अपनी फीलिंग को इग्नोर किया और अपने दिमाग से काम लेते हुए उसने आस्था से पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरी कौन कौन सी कंपनीज के साथ मीटिंग है, तुम मेरी जासूसी कर रही हो, आखिर कौन हो तुम, सही से जवाब दो मुझे, मुझे तुम पर पहले दिन से ही शक है, तुम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही हो, अपनी जालसाजी से तुम्हें मेरे पूरे घर वालों को अपने चक्कर में फंसा लिया है, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी आज उन इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग है। ये बोलते हुए अरमान का मन गुस्से से भर गया था। फ्लैशबैक, अरमान ऑफिस में क्या काम करने वाला था उसकी पूरी डिटेल्स ऑर्डर आस्था उसके ऑफिस से ले लिया करती थी, क्योंकि ऑलरेडी आस्था ने अरमान का पूरा ऑफिस कंट्रोल किया हुआ था। अरमान ने खुद आस्था को जो लैपटॉप दे रखा था उसमें उसने पहले ही उसके सारे वर्क डिटेल्स भर रखे थे जो सीधा सीधा अरमान के पर्सनल लैपटॉप से ही कनेक्ट था, तो आस्था को अरमान की सारी मीटिंग की डिटेल्स के बारे में अच्छी तरह से पता हुआ करता था कि कब अरमान क्या करता है। इतना ही नहीं, अरमान की जिसके भी साथ मीटिंग हुआ करती थी आस्था खुद उसे पर्सनली फ़ोन करके पहले इस बात के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया करती थी कि कोई भी डील कैंसिल ना की जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अरमान को बिल्कुल भी इस बात का एहसास हो कि वो अपनी याददाश्त खो चुका है। इसलिए आस्था अरमान के ऑफिस का भी प्रोफेशनली काम में भी पूरी तरह से ध्यान रख रही थी, वो भी अरमान को बिना बताए। फिलहाल आस्था ने कुछ पल बाद अपना होश संभालते हुए अरमान से कहा, नहीं नहीं मिस्टर सिंघानिया, शायद आप भूल रहे हैं कि आपने मुझे खुद कहा था कि मैं आपके सारे वर्क डिटेल्स तैयार रखूं, और इतना ही नहीं, आपके ऑफिस से हमेशा मुझे आपके वर्क शेड्यूल की कॉपी ऑटोमेटिकली आ जाती है ताकि वक्त आने पर मैं आपको याद दिला सकूं। जैसे ही आस्था ने आंखें मटकाते हुए जो भी उसे पहला शब्द मिला वैसे ही उसने फटाफट से अरमान के सामने एक्सप्लेन कर दिया। आस्था की एक्सप्लेनेशन सुनकर अरमान एक पल के लिए कन्फ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे आस्था की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त दादाजी सिचुएशन संभालने के लिए आगे आए और अरमान पर भड़क उठे। दादाजी बनावटी गुस्सा करते हुए, अरमान अगर आस्था बेटी ने एक दो सवाल पूछ लिया है कि इस वक्त अपनी मीटिंग छोड़कर घर क्यों आया है तो क्या जरूरत है तुझे बाल की खाल निकालने की। ये बोलते हुए दादाजी ने अरमान का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन अरमान इस बात को लेकर दादाजी को नाराजगी से देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है दादाजी, वैसे भी आपको इस लड़की की बातें ही सही लगेंगी, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ ये लड़की इस घर के मामलों में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है, मुझे समझ में नहीं आता इसे ये हक दिया तो दिया किसने। अरमान के मुंह से ये सवाल सुनते ही दादाजी ने एक पल के लिए अरमान की तरफ गुस्से से देखा और अगले ही पल उन्होंने अरमान को सीधा और साफ जवाब दिया, दादाजी नाराजगी से, तूने दिया उसे इतना हक। फिलहाल दादाजी ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कड़क आवाज में कहा, अब अगर तू घर आ ही गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुझे ही फोन करने वाला था, तो तू एक काम कर, फटाफट से आस्था बेटी को शॉपिंग वगैरह कराने के लिए लेकर बाहर जा और इसे कुछ नई साड़ियां दिलाकर लेकर आ। दादाजी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर अरमान बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें अविश्वास से देखने लगा और उसके माथे पर शिकन आ गई। फिर वो छल्लाकर सोचने लगा कि कहीं उसके दादाजी का दिमाग तो नहीं घूम गया है। वो दादाजी के शब्द सुनकर अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। दादाजी अरमान की मन की बात अच्छी तरह से समझ गए, इसलिए वो बेपरवाही से बोले, क्या हुआ तुझे, क्या तुझे कुछ सुनाई नहीं दिया? दादाजी के ये शब्द अरमान का गुस्सा भड़काने के लिए काफी थे। वो तुरंत ही रूखेपन से बोला, दादाजी आखिरकार आपको हो क्या गया है? आप चाहते हैं कि मैं एक मामूली सी केयरटेकर को, जो कि मेरे ही रहमो करम पर इस घर में पल रही है और साथ ही साथ अपना बच्चा भी यहाँ लेकर आई हुई है, उसको लेकर मैं शॉपिंग पर जाऊँ? इम्पॉसिबल। आपने मुझे समझ क्या रखा है दादाजी? क्या आप भूल गए कि मेरा नाम अरमान सिंघानिया है? अब जैसे ही अरमान गुस्से से फट पड़ा तो वैसे ही दादाजी को उस पर काफी हंसी आई, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी अपने चेहरे पर नहीं आने दी और अपनी मुस्कान दबाते हुए दादाजी सीरियस एक्सप्रेशन से बोलते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू अरमान सिंघानिया है, लेकिन तू शायद भूल रहा है कि आस्था बिटिया और उसके बच्चे की जिम्मेदारी तूने ली थी। जब तक तू उसका पति ढूंढकर उसके पास नहीं लेकर आता, तब तक इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से तेरी ही है। अब मैं तुझसे नहीं तो किससे कहूंगा? वैसे भी आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान वो भी घर पर नहीं है, वे भी अपने किसी जरूरी काम से बाहर चले गए हैं, तो फिर मैं किससे बोलूंगा? हाँ, और आस्था बेटी तुम जाओ, जाकर जल्दी से तैयार होकर आओ और फटाफट से अरमान के साथ जाकर कल शाम के लिए कपड़े सामान वगैरह जो भी खरीदना है खरीद कर ले आओ, ठीक है? अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, वैसे ही आस्था परेशान होकर सोच में पड़ गई कि आखिरकार दादाजी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आस्था ने अरमान का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर मुंह बनाया और बेमन से बोली, नहीं नहीं दादाजी, रहने दीजिए, मिस्टर सिंघानिया को परेशानी होगी, मैं अकेली चली जाऊंगी शॉपिंग करने, कोई मसला नहीं है। जैसे ही आस्था ने ये कहा, वैसे ही अरमान का माथा ठनका और वो आस्था को घूरते हुए सोचने लगता है कि वो तो यहाँ इस लड़की पर नजर रखने के लिए आया था, अगर वो शॉपिंग पर अकेली चली जाएगी तो वो उस पर नजर कैसे रखेगा, और अगर दादाजी कह रहे हैं तो क्यों ना मैं इस एंग्री बर्ड को शॉपिंग पर ले जाऊं और फिर वहां जाकर मुझे इस लड़की के बारे में सारी बातें साफ साफ पता चल जाएंगी
और ये भी पता चल जाएगा कि वो किससे चुपके चुपके मिलती जुलती है। जरूर ये यहाँ से बाहर निकलकर किसी दोस्त यार को बुलाएगी और उसके साथ कहीं ना कहीं गुटरगू करने चली जाएगी, और उस वक्त मैं इसके खिलाफ पक्का सबूत हासिल कर लूंगा और मेरे घर वालों के दिलो दिमाग पर जो इस लड़की और उसके बच्चे के नाम की प्यार की झुमपट्टी बंधी हुई है वो पूरी तरह हट जाएगी, और उसके बाद मैं सब लोगों को इसका असली चेहरा दिखाऊंगा कि 2 साल पहले इसका बच्चा कैसे हुआ और ये बच्चा किसका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सच बहुत जल्द ही बाहर आएगा। अरमान अपनी सोच में पूरी तरह गुम था। कल रात की बात सोचते हुए वो काफी हद तक हैरत में पड़ गया, क्योंकि जिस तरह से अरमान ने कल रात अंश को छुपाया था और आस्था को परेशान किया था, ये बात उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, आस्था इतनी आसानी से मुझे कैसे माफ कर सकती है, जबकि मैंने तो उससे माफी मांगी भी नहीं थी। फिलहाल दादाजी कुछ सोचते हुए बोले, अरमान बेटा, अगर तूने इसकी जिम्मेदारी ली है तो तू इस तरह से पीछे नहीं हट सकता, तू जा और बच्ची को शॉपिंग कराकर लेकर आ, अरमान एक नज़र आस्था पर डालते हुए बोला। लेकिन दादाजी, जब मैं मना कर चुका हूँ कि इस घर में कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा तो फिर किस लिए शॉपिंग करनी है? अरमान की बात सुनकर अगले ही पल दादाजी तंग आकर अपने माथे पर हाथ मारते हैं। दादाजी परेशान होकर, अरे बेटा, हम तेरे मेंशन में कोई त्योहार नहीं मना रहे हैं, तुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तू जा और फटाफट से आस्था बेटी को जो भी खरीदना है उसे दिलाकर लेकर आ, और वैसे भी उसने पहले ही अपने कान्हाजी के लिए कपड़े बना रखे हैं और अपने बेटे के लिए भी बना दिए हैं, पर अगर वो अपने पति के लिए कुछ खरीदना चाहती है तो प्लीज उसे शॉपिंग पर लेकर जा। दादाजी ने जब सीधे सीधे अरमान को ऑर्डर दे दिया तो अरमान पूरी तरह मजबूर हो गया और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के गहरी आवाज में बोला, ठीक है, मैं सिर्फ 5 मिनट इंतजार करूंगा, अगर 5 मिनट के अंदर ये लड़की तैयार होकर बाहर नहीं आई तो मैं इसे लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। अरमान की बात सुनकर अगले ही पल दादाजी मन ही मन मुस्कुरा दिए, वहीं आस्था के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट उभर आई। अब देर न करते हुए वो झट से अपने कमरे की ओर भागी। भला अरमान के साथ शॉपिंग जाने का मौका वो ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। रही बात उसकी नाराजगी की, तो आस्था ने मन बना लिया था कि जब वो अरमान के साथ शॉपिंग करने जाएंगी तो अंश वाली बात को लेकर वो पूरी तरह अरमान से बदला लेगी। वो इतनी आसानी से इस बात को कैसे जाने दे सकती है कि अरमान ने उसके बेटे को छुपाकर उसके दिल की धड़कनों को कितनी बुरी तरह से धड़काया था। फिलहाल 3 मिनट के अंदर आस्था फटाफट से चेंज करके अरमान के सामने हल्की मुस्कान के साथ हाजिर थी। अरमान ने एक नज़र आस्था को देखा। आस्था ने कुछ खास मेकअप वगैरह नहीं लगाया था, उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में केवल काजल ही सजा हुआ था और उसके गुलाबी होठों को किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं थी। वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। हाँ, उसकी कदकाठी थोड़ी कम थी, जो कि अरमान के सीने तक ही आती थी, क्योंकि जब पहले आस्था अरमान के गले लगती थी तो उसे अरमान की धड़कन साफ साफ महसूस होती थी। अरमान उससे कहता भी था कि अगर उसकी हाइट थोड़ी और उससे मिलती तो और अच्छा होता। तब आस्था खुश होकर उससे कहती थी कि उसे इतनी हाइट पसंद है, क्योंकि कम से कम वो अरमान के सीने पर अपना सिर रखकर उसके दिल की धड़कन तो सुन सकती हैं। फिलहाल इस बात पर अरमान उसे दिल खोलकर प्यार किया करता था, पर आज आस्था ये सारी बातें सिर्फ अपने मन में ही सोच सकती थी। एक बार फिर वो सारी बातें याद आने पर उसका मन बेचैन उठा और वो आंखों में दर्द छुपाते हुए जल्दी से अरमान के साथ उसकी कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसे अपने पास बैठे हुए देखकर अरमान का माथा सिकुड़ जाता है। उसने आज तक किसी भी लड़की को अपनी कार की पीछे वाली सीट पर नहीं बिठाया था, इसलिए आस्था के साथ बैठते ही वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि वो आस्था पर पूरी नजर रखकर उसका असली चेहरा सबके सामने लाना चाहता था। इसलिए उसने सब्र का कड़वा घूंट पी लिया और आस्था के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गया। फिलहाल कार बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर आहान और रौनक को शॉपिंग कराने से पहले सीधे डॉक्टर के पास लेकर जाना था। आज वहां पर रौनक को एक इंजेक्शन भी लगने वाला था।